करताल।
हरे कृष्णा। हमारे बीच परम पूज्य श्री जीता मित्र प्रभु जी दिल्ली के श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर से यहाँ पर हमें अपना संग देने के लिए आए हुए हैं और हम पर कृपा करने के लिए मिड डे मील की इस गुड़गांव मिड डे मील में जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं विशेषकर प्रभु जी से जो है आशीर्वचन लें अभी और जो संदेश प्रभु जी दे रहे हैं उसको जो है बांध कर रखें ताकि प्रभु जी अगले जल्दी आप अगर श्रद्धापूर्वक अच्छे से सुनेंगे तो जल्दी कुछ पास ही समय महीने दो महीने में जब भी प्रभु जी को समय मिलेगा दोबारा भी आपको संदेश देने के लिए आएंगे। तो एक बार प्रभु जी का स्वागत हम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। सभी लोग ऊंचे स्वर में बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे, साथ में बोले हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब महामंत्र बोला जाता है ना आप सब लोगों को अभ्यास है तो ऐसा नहीं साथ में ही बोलना है, जब भी महामंत्र बोले तो साथ में ही बोलना चाहिए। जब हम कीर्तन करते हैं मृदंग पर जैसे तो उस समय पीछे गाना चाहिए। ठीक है हरे कृष्ण
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी यमुना तीरा जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी यमुना तीरा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मिट जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा हरे कृष्णा। तो बहुत हरी बोल छोड़ मैं अपने हिसाब से करूँगा। हरे कृष्णा। अब ठीक है तो मैं अपनी आवाज़ को खुद ही जानता हूँ ना। तो बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देख करके और आपके सौभाग्य को देख करके कि आपका इतना सौभाग्य है कि आपको ये सौभाग्य यहाँ ले आया। ये भगवान की सेवा मिड डे मील किचन की जो सेवा है तो ये सीधे प्रभुपाद के संपर्क में आपका सौभाग्य लाया है। तो आपके सौभाग्य को देख करके बहुत हर्ष हो रहा है। लेकिन कुछ माताएं हैं या कुछ जो है पुरुष भी हैं जो कि प्रणाम करना नहीं जानते। जब हमने जयकारा बोला तो यहाँ सभी लोगों ने सिर झुका करके प्रणाम किया। लेकिन कुछ जो माताएं हैं और कुछ पुरुष हैं तो प्रणाम करना नहीं जानते हैं, है ना। तो प्रणाम करना भी सीखिए क्योंकि प्रणाम और दुख के समन्वय, प्रणाम करने से सब दुख समाप्त हो जाते हैं। तो इतनी सरल विधि से अगर अपने दुख समाप्त हो जाएं तो क्यों ना इसको अपनाया जाए, है ना। तो जब हम जयकारा बोलते हैं तो जय भी बोलना चाहिए। जब मैं जय बोलता हूँ तो जय भी बोलना चाहिए और साथ साथ अपना सिर जमीन में लगा करके प्रणाम करना चाहिए। इसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। पांच अंगों से प्रणाम करना है। पांच अंग, एक तो सिर है, सिर जमीन में लगाना है, और दो घुटने हैं और दो हाथ हैं, ये जमीन में लगाने हैं। पांच अंग हैं, ठीक है। बाकी शरीर जमीन से ऊपर उठा रहेगा। आपके पाँच अंग जमीन में लगेंगे। एक तो सिर जमीन में लगेंगे, दो घुटने और दो हाथ, पंचांग प्रणाम, है ना। तो इतने से ही जो है अगर दुख समाप्त हो जाए, दुखों का शमन हो जाए तो इतनी सरल विधि को क्यों ना अपनाया जाए, ठीक है ना। तो जय भी बोलना चाहिए। तो हमारे पास जो है तीन विषय हैं। तीन विषयों में हम चर्चा करेंगे। धनंजय कृष्ण प्रभु ने मुझे बताया था। तो पहला तो है हरि नाम का कीर्तन। तो ये देख करके बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के लोग कीर्तन करने में बड़े अभ्यस्त हैं और शायद काफ़ी देर से कीर्तन कर रहे थे यहाँ पर, है ना। तो कीर्तन को जो है प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संघा परम ब्रजेत। तो कृष्ण के कीर्तन मात्र से ही कोई व्यक्ति भगवान के धाम में जा सकता है, चला जाएगा। तो इतनी सरल विधि है कीर्तन की, तो कीर्तन के विषय में दो बातें हैं, कीर्तन के विषय में दो बातें हैं। पहली बात तो है कीर्तन इस प्रकार से किया जाता है, मृदंग करतार के साथ एक व्यक्ति पहले गाता है और फिर बाकी सब लोग दोहराते हैं, तो एक कीर्तन तो ये होता है। और दूसरा कीर्तन जो होता है वो कैसे होता है, अपनी जप माला पर होता है, है ना। तो जप माला पर जो कीर्तन होता है वो अपना व्यक्तिगत कीर्तन होता है। इस कीर्तन में एक सुविधा ये भी है कि आप जहाँ भी हैं, आप अकेले हैं या आप सबके बीच में भी हैं, आप चल रहे हैं, बैठे हैं, आप ये माला पर जप कर सकते हैं। इस कीर्तन में आपको खुद हरे कृष्ण मंत्र बोलना होता है और खुद ही सुनना होता है। दूसरे व्यक्ति सुने या ना सुने, आपको सुनना है और आपको ही बोलना है। तो ये कीर्तन सुविधा की दृष्टि से बहुत आसान है। तो माला पर जब आप लोगों से कितने लोग हैं जो माला पर जप करते हैं, हाथ उठाइए, माला पर जप करते हैं। अच्छा, तो बाकी जो लोग जप नहीं करते हैं तो उनको भी कुछ लोग होने चाहिए जो ट्रेनिंग दें। नारायण प्रभु, नारायण प्रभु की ड्यूटी है माला पर जप करना सिखाएं, ठीक है, क्योंकि ये अपनी रक्षा के लिए सबसे बड़ा उपाय है। इसके अलावा और कोई रक्षा नहीं है। आपके जो धन संपत्ति है, आपका शरीर है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। जब आप अपना शरीर छोड़ के जाएंगे तो कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, केवल यही साथ जाएगा, क्या, ये जप जो आपने माला पर जप किया है वो साथ में जाएगा। और ये आपकी असली आमदनी है, असली आमदनी है। चैतन्य महाप्रभु यही कहा करते थे कि मैं जो है उसी के घर में प्रसाद ग्रहण करूँगा जो लखपति हो। लखपति का मतलब है कि एक दिन में 100,000 नाम जो ले तो वो लखपति कहलाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान बोले कि मैं जो है लखपति के घर में भोजन करूँगा। लेकिन लक्ष्यपति, लखपति का मतलब ये रुपए नहीं है, वो असली जो है जो 100,000 नाम रोज ले तो वो लखपति कहलाता है, है ना। तो हम अभी इतना नहीं कह रहे हैं आपसे कि 100,000 नाम लीजिए, आप कम से कम एक माला जप करिए, दो माला जप करिए, लेकिन कम ना करिए। कोई नियम बनाए तो उसको कम मत करिए। तो ये जो है आपकी असली आमदनी है जो आपके साथ जाएगी, क्योंकि जाना तो सबको है, शरीर छोड़ करके जाना तो है, सबको जाना है। अब वो जो यात्रा है तो वो बड़ी अज्ञात यात्रा है, आपको कहाँ ले जाया जाएगा आपके कर्मों के अनुसार आपको कुछ पता नहीं। और आपके साथ में अगर कुछ धन संपत्ति नहीं है तो यात्रा में फिर बहुत असुविधाएं होती हैं। तो ये जो धन संपत्ति है, ये असली धन संपत्ति है जो आपके साथ जाएगी, वो ये हरे कृष्ण का जप है। तो आप जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं ये आपके साथ यही जाएगा, यही धन है जो आपके साथ जाएगा, है ना। अगर आपने कोई बहुत लंबी यात्रा की तैयारी की है और आपने अपने पास में कुछ पैसा नहीं रखा तो फिर आप बहुत खतरे में हैं। तो इसी प्रकार से ये जो आपकी यात्रा है शरीर छोड़ करके जो जाना है, तो उसके लिए आप अपने पास कौन सी संपत्ति है जो जोड़ रहे हैं जो आपके साथ जाएगी, तो ये हरि नाम है। तो इसलिए इसमें लोभ होना चाहिए। तो जब आपको लाभ पता होता है कि इसमें लाभ है तो फिर इसका लोभ होना चाहिए। तो कम से कम करनी मनाओ कि कम से कम एक माला जप करेंगे, दो माला जप करेंगे। ये कितने माला आप लोग जप करते हैं तो मैं पूछूं आपसे कि आप लोग कितने माला जप करते हैं, तो आपने कितने लोग हैं जो 16 माला जप करते हैं हरि नाम, 16 माला। अच्छा, 16 माला से कम 8 माला, उससे कम एक माला, कम से कम कितने करते हैं। तो अभी तो जब करने के लिए मैंने पूछा था तो कई लोगों ने हाथ उठाया था, तो कैसे हाथ उठाया था आप लोग, अब तो हाथ कोई नहीं उठा रहा है। मैंने एक माला कहा कि कम से कम एक माला जप करने, तो कोई हाथ नहीं उठा रहा है। जब मैंने पूछा था कि आप कितने लोग हैं जो माला पर जप करते हैं तो कई लोगों ने हाथ उठाया था। तो मेरी बात को समझे नहीं थे क्या, है नहीं। माला पर कितने लोग माला पर जप करते हैं, फिर से हाथ उठाइए। कितने लोग अभी कम हाथ उठा रहे हैं? अच्छा, माला पर जप करते हैं, और एक माला जब मैं पूछता हूँ, एक माला कम से कम जप करते हैं तो हाथ नहीं उठा रहे हैं? है? है? करवाती हैं तो सब लोग एक माला, तो कम से कम एक माला जब कर ही रहे हैं। अच्छा, तो जो हाथ उठाए कि माला पर जब करते हैं, तो इसीलिए हाथ उठाया था कि करवाया था? अच्छा, बिना माला के? अरे बिना माला के 108। अच्छा, तो एक तो वो तो सब लोग कर रहे हैं, वो सब लोग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अपनी व्यक्तिगत माला भी अगर आप करें तो आपने जो है अपने लिए है ये, तो आप लोग जो है ये करिए। तो ये बताया गया है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है केवलम कलव नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में अन्यथा कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। हाँ, केवल गति हरि नाम है, हरि नाम है, हरि नाम है। ये बृहन्नारदी पुराण का एक श्लोक है। तो इस श्लोक में तीन बार बोला गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम। जो संस्कृत के श्लोक होते हैं शास्त्रों में, जो श्लोक होते हैं तो उनमें थोड़े शब्दों में बहुत लंबी बात बताई जाती है, लेकिन इस श्लोक में तीन बार कहा गया। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कोई अगर बात होती है तो उसको तीन बार दोहराया गया। तो क्या कहा गया? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम ही केवल गति है कलयुग में, अन्यथा गति नहीं है। नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव, तीन बार फिर वो भी कहा गया कि नहीं है नहीं है नहीं है, अन्यथा कोई गति नहीं है, है ना। तो इस बात को अच्छी प्रकार से आप लोग समझ लीजिए कि हरि नाम, और हरि नाम भी जो है अगर गहराई से समझें तो ये 16 नाम ही समझना चाहिए। जो हरे कृष्ण मंत्र के 16 नाम हैं ये हरि नाम है, है ना। तो कोई केवल हरे कृष्णा ही बोले तो वो भी दिव्य है, कोई कृष्ण कृष्ण बोलता वो भी दिव्य है, लेकिन फिर भी 16 नाम का विशेष महत्व है। हम लोग 16 नाम जो है जो बोलते हैं तो ये शास्त्र में विशेष बताया गया है 16 नाम, है ना। ये बताया गया है कली संतरण उपनिषद में कि इति षोडश से कम नाम नाम कली कलम सनासनम नातः परतरोपाया सर्ववेदेषु दृश्यते। ये 16 नाम कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं, और इनसे बढ़कर के कोई उपाय समस्त वेदों में नहीं है, है ना। तो भगवान के नाम तो सभी दिव्य हैं और पूरी शक्ति है भगवान के, प्रत्येक नाम में भगवान की पूरी शक्ति है। कोई राम नाम बोलता है, कोई हरे कृष्ण बोलता है, लेकिन 16 नाम विशेष रूप से कलयुग में शक्तिशाली हैं, और इनसे बढ़कर के कोई उपाय समस्त वेदों में नहीं है। तो ये जो है कुछ हमने चर्चा की हरि नाम के बारे में। अब दूसरी बात है प्रसाद के विषय में कि भगवान को जब भोग लग जाता है तो हम खाते हैं। तो एक ये जो चेतना है ये आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। विशेष रूप से मिड डे मील किचन में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनकी चेतना ये मतलब बहुत अच्छी प्रकार से अंदर तक होनी चाहिए कि भगवान को जब तक भोग नहीं लगा है तब तक कुछ ना खाया जाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सुनिए बड़े ध्यान से, श्रील प्रभुपाद जिन्होंने पूरे दुनिया में आंदोलन फैलाया है, श्रील प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो 3 वर्ष की आयु के थे। 3 वर्ष की आयु समझते हैं, बहुत छोटी अवस्था है, छोटा सा बालक, 3 वर्ष की आयु का बालक था जिस समय। तो पिता बहुत बड़े आचार्य थे उनके, भक्तिवरण ठाकुर बहुत बड़े गुरु थे। तो उनके घर में कुछ मौसम के आम आए, तो 3 साल का बच्चा उसने एक आम खा लिया। तो पिता ने बुरा नहीं माना था क्योंकि 3 साल का बच्चा अगर कुछ खा ले तो कुछ दोष नहीं है, लेकिन फिर भी शिक्षा के लिए पिता ने उस बालक को बताया कि देखो कभी भी ऐसे चीज नहीं खाना चाहिए जब तक भगवान को भोग ना लगे। तो इस कारण से वो 3 साल के बालक ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि आगे से मैं कभी जीवन भर आम नहीं खाऊंगा, अपने को उसने दंड दिया, ये चेतना। तो 3 साल की, ये बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके बहुत शिष्य हुए। तो उनके शिष्य लोग उनको कभी आम देते थे तो वो कहते थे मैं आम नहीं खा सकता क्योंकि मैंने अपराध किया है, क्योंकि मैंने एक बार आम खाया था बिना भोग लगाए, तो अब मैं आम नहीं खा सकता। तो वे सीधे अपने को अपराधी बता करके आम स्वीकार नहीं करते थे और बाकी चीज़ें स्वीकार कर लेते थे, लेकिन आम नहीं स्वीकार करते थे। तो ये चेतना थी, लेकिन फिर भी व्यवहार की दृष्टि से एक बार समझना है कि अगर भोग ना भी लगाएं तो आप फल है, जल है, दूध है, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। अगर भोग नहीं भी लगा है तो फल, जल, दूध ये तो ले सकते हैं, लेकिन अन्न, जहाँ तक अन्न की बात है, अन्न जो है जब पकाया गया है, हैं, तो उसको जो है नहीं लेना चाहिए जब तक भगवान को भोग नहीं लगा, है ना। तो जो भावना, क्योंकि यहाँ पर तो पकाया जाता है, अन्न पकाया जाता है ना। तो ये हमारी जो है चेतना इस प्रकार की होनी चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, तो उनकी बहुत दिव्य लीलाएँ। तो भी एक बार एक ऐसे व्यक्ति के घर गए जो कि सन्यासी का वेश धारण करता था, लेकिन उसके जो है पत्नी भी थी और वो शराबी भी था और सन्यासी का वेश धारण करता था, तो बड़ा भ्रष्ट सन्यासी था। लेकिन श्री चैतन्य और नित्यानंद इतने दयालु हैं भगवान कि वे उसके घर में भी रुके। तो वो बोला कि भोजन करो, विश्राम करो, तब आगे जाओ। तो भगवान चैतन्य और नित्यानंद ने उसके घर में क्या भोजन किया, उसमें बताया गया है कि दूध, आम और कटहल, दूध, आम और कटहल का भोजन किया, वो भी भगवान को भोग लगा करके भोजन किया, उसके घर में अन्न का भोजन नहीं किया। क्योंकि जिनकी दूषित मानसिकता होती है, उनके घर में पकाया हुआ जो भोजन है तो उनकी दूषित मानसिकता उसमें आ जाती है, जैसे इसमें अन्न अगर पकाया जाता है तो हम उस प्रकार से अन्न किसी भी व्यक्ति के बनाया हुआ अन्न हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अन्न पका रहा है तो उसकी जो दूषित मानसिकता होती है वो अन्न में आ जाती है, चाहे यहाँ मशीनों के द्वारा अन्न पक रहा है, लेकिन तो भी जो लोग काम करने वाले हैं तो वो जो पका रहे हैं वो उनकी जो दूषित मानसिकता है वो आ जाएगी। इसलिए आप लोगों को जब आप पका रहे हैं तो आप लोगों की ये भावना होनी चाहिए कि ये जो अन्न जो पकाया जा रहा है, चावल हो, दाल हो, जो भी चीज़ें हो पकाई जा रही हैं, ये किस लिए, भगवान के भोग के लिए हैं। तो भगवान का हमेशा दर्शन करो, पहले जब आते हो तो भगवान का दर्शन करो और जो है थोड़ा कीर्तन करो या जप करो, हैं। तो आप लोग जब पकाते हैं तो ये जो आपकी मानसिकता है वो उस अन्न में आएगी, उस अन्न में जाएगी, और वो जो अन्न है उन बच्चों को जब मिलेगा खाने के लिए तो उनकी जो है चेतना शुद्ध होगी, चाहे वो नहीं जानते हैं। क्योंकि सरकार प्रसाद के नाम पर आपको जो है ये सुविधा नहीं दे रही कि आप प्रसाद खिलाएंगे, तो ये हम जो कर रहे हैं ये एक प्रकार से सरकार के नियम के विरुद्ध है कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो ये जो भगवान को भोग लग रहा है इससे एक गुप्त प्रभाव पड़ रहा है, उस भोजन में जा रहा है। तो जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, जो भोजन पका रहे हैं, जो मशीन चला रहे हैं, चपाती बना रहे हैं, और कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ उसमें चाहे वो मशीन में कोई बटन दबा रहे हों, तो उनकी जो मानसिकता है वो उस भोजन में जा रही है और वो जो है उन बच्चों में अपने आप जा रही है ना। तो ये आपका जो है, आप ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उस समय ये नहीं सोचना कि मेरे लिए, कि ये मेरे लिए पक रहा है, क्योंकि भगवान कहते हैं भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, जो अपने लिए भोजन पकाते हैं वो अपना पाप खाते हैं, है ना। तो ये जो है भगवान के लिए पकाया जा रहा है, ये आपकी जो चेतना है ये उसमें जाएगी अन्न में। और वो जो बच्चे हैं उनको तो हम मतलब भोजन के नाम पर दे रहे हैं, प्रसाद के नाम पर नहीं खिला रहे हैं, तो उन्हें कुछ पता नहीं, उनको तो भोजन मिल रहा है, वो तो अपना खाना है, वो तो खाना ही कहेंगे कि हम खाना खा रहे हैं। लेकिन वो जो भोजन है आपने जो पकाया है, आपकी जो मानसिकता है वो उसमें गई है, तो वो कितने लाखों लाखों बच्चों का जो जीवन है वो पवित्र होगा। तो ये बहुत आपकी जिम्मेदारी है, बहुत महत्वपूर्ण आपका ये कार्य है, कि आप लाखों लाखों बच्चों की मानसिकता को शुद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आपकी जो चेतना है वो शुद्ध हो। तो भक्त की चेतना हमेशा यही होती है कि जब भी खाएगा, जब भी उसके लिए कुछ भोजन खाने के लिए आता है, तो वो क्या सोचता है कि भोग लगा कि नहीं लगा, वो हमेशा पूछता है ये भोग लगा कि नहीं लगा, ये भगवान को ऑफर हुआ कि नहीं हुआ। कई बार शब्द जो है अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करते हैं, ऑफर हो गया कि नहीं, भगवान को ऑफर हो गया कि नहीं हो गया। विशेष रूप से अन्न अगर है, चपाती है, दाल है, कोई ऐसी चीज़ है, चावल है, तो खाने के पहले हमेशा ये सोचते हैं कि भगवान को भोग लगा कि नहीं लगा। तो ये चेतना आपके जो है दिमाग में बहुत गहरी होना चाहिए। ये भी बताया गया है कि श्री हरि के नैवेद्य की वस्तु अगर कोई खाता है, मतलब भगवान को भोग लगना है, और आपने उसमें से कुछ निकाल लिया, खा लिया, अगर भोग लगने के पहले आपने कुछ खा लिया, निकाल लिया, तो ब्रह्म व्यवर्त पुराण में लिखा है कि वो कृमि कुंड नामक नरक में जाता है, और भोजन के रूप में उसको मांस मिलता है, और 3 जन्मों तक म्लेच्छ का उसको शरीर प्राप्त होता है। अब ये कृमि कुंड श्रीमद् भागवत में बताया गया है, कृमि भोजन नाम का नरक, वो कैसा नरक है सुन लीजिए, कैसा नरक है। 1,00,000 योजन लंबा और 1,00,000 योजन चौड़ा एक कुंड है, कुंड समझ रहे, गड्ढा। कितना लंबा? 1,00,000 योजन, उसमें 12 से गुणा करें तो किलोमीटर बनेंगे, तो 12,00,000 किलोमीटर लंबा और 12,00,000 किलोमीटर चौड़ा एक कुंड है जो कीड़ों से भरा हुआ है, और उसमें उस व्यक्ति को डाला जाता है, तो कीड़े उसको काटते हैं, कीड़े काटेंगे उसके शरीर को, और वो कीड़ों को ही खाएगा क्योंकि उसको और कुछ भोजन नहीं मिलता, उसको बोलते हैं कृमि भोजन। तो ये नरक जो है उन ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। तो हमें इस बात से जो है बहुत सचेत रहना चाहिए कि अगर भगवान को भोग नहीं लगा है तो आपको उसमें से कोई दाना नहीं लेना है। कृष्ण प्रसाद, भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग बनाना और उन्हें भोग लगाना और उन्हें समर्पण के पश्चात प्रसाद का वितरण करना, ये वैष्णव संस्कृति है, ये वैष्णवों की संस्कृति है। तो आप लोग जो यहाँ मिड डे मील में काम कर रहे हैं, आप लोग क्या हैं? आप लोग वैष्णव हैं, आप लोगों को वैष्णव बनना बहुत जरूरी है। जो वैष्णव नहीं है वे समझ नहीं सकते कि श्री कृष्ण किस प्रकार खाते हैं, क्योंकि उन्हें समर्पित भोग वैसे ही वैसे बचे हुए प्रतीत होते हैं कि ज्यों का त्यों तो है, क्या इसमें कुछ कमी तो हो ही नहीं, भगवान ने कहाँ खाया। तो जो भौतिकतावादी लोग हैं वो सोचते हैं कि भोग लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो जैसे पहले रखा था वैसे अभी भी निकला है, क्या अंतर। परंतु भगवान वास्तव में खाते हैं, और भक्तों ने संकल्प किया होता है कि वे केवल भगवान के खाने के बाद उनके द्वारा छोड़ा गया प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। तो प्रसाद क्या होता है? जो भगवान ने भोग लिया, उसका स्वाद ले लिया और छोड़ दिया, उसको प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद का मतलब प्रसन्नता है। जैसे कि मान लीजिए आप मेरे लिए कुछ ला रहे हैं खाने के लिए, तो मैंने उसको खा लिया और अब छोड़ दिया और मैं संतुष्ट हो गया, तो फिर ये क्या हो गया? मेरी प्रसन्नता हो गई, मेरी प्रसन्नता, तो प्रसाद का मतलब प्रसन्नता। तो भगवान का जो प्रसाद है वो कैसे होता है कि आपने भगवान को भोग लगाया, तो आपकी भक्ति भावना से भगवान ने उस भोग को स्वीकार किया और फिर छोड़ दिया, अब ये प्रसाद हो गया, यानी भगवान की प्रसन्नता हो गई। तो वो जो प्रसाद आप खाते हैं तो आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, तो भगवान की प्रसन्नता आपको मिलेगी, ये भगवान प्रसन्न हो गए। तो इसलिए भक्त हमेशा प्रसाद खाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसो बजायते, प्रसाद के द्वारा सब दुखों की हानि हो जाती है। प्रसाद खाने से एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, और क्या नुकसान होता है, सब दुखों का नुकसान होता है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर मत खाओ, अगर आप ये नुकसान नहीं चाहते हो तो प्रसाद मत खाओ, इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, है? तो कई जन्मों के आपके जो दुख हैं वो सब जो है आपके दूर हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा नुकसान है प्रसाद खाने से। तो प्रसाद जो है इसलिए भक्त लोग खाते हैं, और भक्तों ने संकल्प किया होता है कि वे केवल भगवान के खाने के बाद उनका छोड़ा, उनके द्वारा छोड़ा गया प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम और भक्ति द्वारा अर्पित खाद्य पदार्थ ही खाते हैं, इसलिए भक्तगण बड़ी लगन से उत्तम किस्म के फल, साग, सब्जी, शक्कर और अन्य दूध के पदार्थ जुटाते हैं और बड़े ध्यान से भोजन को बनाते हैं। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, मशरूम, सिरका, लाल मसूर की दाल, ये श्री कृष्ण को अर्पित नहीं किए जा सकते। अधिक मसालों वाले भोजन भी पदार्थ भगवान को समर्पण के लायक नहीं होते। दूध यदि गाय का हो तो उत्तम है। श्री कृष्ण के लिए भोग बनाने के लिए शुद्ध देसी घी, विशेषकर गाय के दूध का घी सर्वश्रेष्ठ है। जो भक्तगण देसी घी नहीं जुटा सकते वे सरसों और तिल के तेलों का प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें परंपरागत मान्यता प्राप्त है। आज के युग में उत्तम भोजन की कीमतें बहुत अधिक होने के कारण बहुत से भक्त जो घर में रहते हुए अपनी सीमित आय के अनुसार श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। ये आवाज़ ठीक नहीं आ रही क्या? हरि ओम, जय हो, जय जगन्नाथ की जय हो। देखिए भोग लगाने की बात कर रहे हैं तो आ गए भगवान दिखाने के लिए कि मुझे भोग लगाओ पहले, तो भगवान आ गए, है ना। तो जिनकी सीमित आय है, आय समझते क्या है, आय सीमित आय आमदनी, जिनकी सीमित आमदनी है तो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान का भोग बनाने के लिए मूंगफली आदि कुछ और तेलों का भी प्रयोग करते हैं। भगवान के लिए रसोई बनाते हुए भक्तगण केवल ये सोचते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण उनके द्वारा बनाए हुए व्यंजनों का रसास्वादन करेंगे। जब आप बनाते हैं चपाती बनाते हैं, भगवान को कैसे लगेगी ये सोचिए कि भगवान इसका स्वाद लेंगे। आप चपाती बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, ये भगवान के लिए बना रहे हैं, और कितना अच्छी तरह से बनना चाहिए, सफाई के साथ बनना चाहिए। तो ये जो है आपका ध्यान का विषय है, वे अपने बारे में नहीं सोचते कि मुझे कैसा लगेगा, या अपने परिवार के सदस्यों के बारे में नहीं सोचते, या अन्य भक्तों के स्वाद की या तृप्ति के विषय में नहीं सोचते। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि भगवान के लिए भोग बड़ी स्वच्छता से बनाया जाए। तो मिड डे मील किचन की जो विशेषता है वो यही है कि यहाँ पर बहुत सफाई है, कि अपना हाथ भी ना लगे, इस तरह से भोजन बनाया जाता है। श्री कृष्ण को अर्पण करने से पहले कोई भी, यहाँ तक कि रसोईया भी, किसी भोजन को नहीं चख सकता। ये जो है बहुत कठोर नियम है। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि नमक कितना पड़ा है मैं टेस्ट कर लूं, है ना, ये भी मना है इस प्रकार से। तो आप लोगों को जो है कुछ मैं ये बातें बता रहा था। अब एक विषय है चोरी करना। आप लोग ये जो मिड डे मील किचन में काम कर रहे हैं तो ये जो है मंदिर है, ये मंदिर के जैसे फुल टाइम डिवोटी होते हैं हम लोग, उसी तरह आप लोग भी हैं, मिड डे मील जो है ये किचन है, ये भगवान का किचन है, भगवान का रसोई घर है, और इसमें आप लोग काम करने वाले भगवान के क्या है, रसोई है, आप लोग भगवान के रसोई हैं। आवाज आ रही सबको? आप लोग भगवान के रसोई हैं। तो अगर कुछ चोरी है अगर करते हैं तो इसका बहुत इसका जो है बहुत परिणाम भी होता है, इसकी प्रतिक्रिया होती है। बांके बिहारी मंदिर के पुजारी की एक घटना मैंने सुनी, तो किसी सज्जन ने बताई, सच्ची घटना है। बांके बिहारी मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध है वृंदावन में, है ना, आप लोग जानते हैं बांके बिहारी मंदिर का नाम कितने लोगों ने जाना है, को लोग कितने लोग जानते हैं, सुना है या देखा है, दर्शन किया है ना? तो बांके बिहारी मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है और बहुत वहाँ भीड़ होती है, दर्शनार्थियों की बड़ी भीड़ होती है। तो बांके बिहारी मंदिर के एक पुजारी, हरि बोल, अभी ठीक है, बांके बिहारी मंदिर के एक पुजारी ने अभी करीब हो गया 50 साल तो करीब हो चुका है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो एक माता जी जो है बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए जा रही थी, तो थोड़ा सा मतलब सवेरा होने वाला था, कुछ अंधेरा भी था और कुछ जो है सवेरा होने वाला था, तो उन्होंने देखा कि वो पुजारी जी रास्ते में खड़े हैं। तो माता जी ने पूछा कि पुजारी जी आप तो शरीर छोड़ चुके हैं लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप जिंदा हैं, हाँ ये क्या आश्चर्य में देख रही हूँ कि आप तो मर गए लेकिन मैं आपको देख रही हूँ कि आप जिंदा हैं। तो वो पुजारी जी बोले कि ये बात सही है कि मैं शरीर छोड़ चुका हूँ और मैं अब प्रेत का शरीर मैंने प्राप्त किया है। अब देखो कितना आश्चर्य। वो माता जी बोली, अरे महाराज आप दिन रात बांके बिहारी की पूजा करते थे, आपको प्रेत का शरीर मिल गया, आप प्रेत बन गए। तो बोले बात यह है कि हम पूजा जरूर करते थे लेकिन वो हमारी जो है कुछ भक्ति नहीं थी, हम जो कुछ भी करते थे वो अपने भोग के लिए करते थे, मतलब जो कुछ भी अपना अच्छा लगा सो निकाल लिया, सब कुछ चलता था, आप समझ रहे। तो वो पुजारी जो है जो भगवान की दिन रात पूजा कर रहा है उसको प्रेत का शरीर मिला है ना। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो है हमें प्रतिक्रिया मिली है। लेकिन फिर वो बोले कि हाँ बांके बिहारी की पूजा करने का एक तो हमें अच्छा परिणाम ये मिला है कि हम यहाँ रास्ते में भक्तों के दर्शन कर लेते हैं, हमें प्रेत का शरीर मिला है, इन भक्त जो भक्त लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनकी जो शुद्ध भावना होती है तो उनके दर्शन हम कर लेते हैं, तो ये हमें एक विशेष सुविधा प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अगर यहाँ मिड डे मील किचन में आप सेवा कर रहे हैं तो उसका शुभ फल तो अवश्य है, सुफल अवश्य है, लेकिन अगर कुछ अपराध करते हैं, मान लो चोरी करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया से क्या होगा, आपको शुभ और अशुभ दोनों फल प्राप्त होंगे, है ना। लेकिन अगर आप अपराध नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे, भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन अगर अपराध करते हैं, मान लो कुछ चोरी की, कुछ इधर उधर सामान कर दिया है ना, तो इसकी जो प्रतिक्रिया है वो मिलेगी। हो सकता है कि आप मिड डे मील के अधिकारियों की नज़रों से बच गए, बच जाएं, लेकिन भगवान की जो व्यवस्था है उससे आप नहीं बच सकते, तो बहुत उसकी जो है कड़ी व्यवस्था है और बहुत सूक्ष्म व्यवस्था है, वो सब कुछ नोट किया जा रहा है। आपके जितने भी कर्म हैं तो उनको लिखने के लिए यमलोक में बहुत से मुनिम हैं जो बैठे हुए हैं और एक एक मुनिम एक एक व्यक्ति का खाता बना रहा है, और आपका खाता वहाँ लिखने वाले मुनिम बैठे हुए हैं और वहाँ से दूत आकर के आपका कर्म देख करके वहाँ लिखवाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, इस प्रकार आना जाना लगा रहता है और हर व्यक्ति का कर्म वहाँ लिखा जा रहा है। और जब शरीर छोड़ने के बाद अगर आपके कर्म शुभ अशुभ दोनों कर्म हैं तो आपको वहाँ यमराज के सामने खड़ा किया जाएगा और आपको कोई वकील नहीं मिलेगा, वहाँ चित्रगुप्त को यमराज बोलेंगे कि इनका खाता पढ़ के सुनाओ, तो आपको सुनाया जाएगा कि आपने क्या शुभ किया क्या अशुभ किया, उसके अनुसार यमराज आदेश देंगे तो स्वर्ग स्वर्ग भी जा सकते हैं, या आदेश देंगे आपको कोई कीड़े और पक्षी का भी शरीर मिल जाता है, पशु का शरीर मिल जाए तो वो आज्ञा देंगे, आपको मनुष्य का शरीर मिल जाए वो आज्ञा देंगे, या नरक में अगर वो निश्चित करें कि आपको नरक में रहना है तो नरक में रहने की भी आज्ञा देंगे। लेकिन अगर कोई अपराध नहीं करेंगे तो आपको उस रास्ते से जाना ही नहीं पड़ेगा, आपका पूरा खाता रद्द हो जाएगा, आपके खाते में जो लिखा गया है वह सब मिटा दिया जाएगा और आपके लिए यहाँ से भगवान का विमान आएगा सीधे वैकुंठ जाने के लिए। तो इस प्रकार की जो है जो गति है ये आपके हाथ में है। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से ऐसा करना चाहिए कि ये नहीं सोचना कि अगर मिड डे मील के अधिकारी नहीं देख रहे हैं तो कुछ काम जो है उल्टा सीधा कर लें चल जाएगा, किसी ने देखा नहीं है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब जो है व्यवस्था इतनी है कि एक एक जो है क्षण का आपका जो कर्म है वो लिखवाया जा रहा है, उसी समय लिखवाया जा रहा है, मतलब देर नहीं होती है, देर नहीं होती, उसी समय लिखा जा रहा है, सबका कर्म लिखा जा रहा है ना। और ब्रह्म विवर्त पुराण में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई मंदिर की वृत्ति को छीनता है, मंदिर में अपनी तरफ से कुछ मान लो दान दिया है, अब ये मिड डे मील किचन की भी यही बात है, ये भी मंदिर ही है, तो मंदिर में किसी ने कुछ दान दिया है या आपने खुद ही दान दिया है और वो अगर आप छीनते हैं किसी प्रकार से तो 60,000 वर्षों तक विट कुंड में रहना होगा। नरक में एक कुंड है, एक तो कृमि कुंड है जो जिसकी हमने चर्चा की, दूसरा है विट कुंड। विट कुंड का मतलब है मल भरा हुआ है, इतना ही बड़ा कुंड है जिसमें मल भरा हुआ है, उसमें 60,000 वर्षों तक रहना पड़ता है और उसके बाद पृथ्वी पर आएंगे 60,000 वर्ष उस नरक में रहने के बाद जब आप पृथ्वी पर आएंगे तो 60,000 वर्षों तक मल का कीड़ा भी बनना पड़ेगा। मल में कीड़े होते हैं है ना, तो मल का कीड़ा भी 60,000 वर्ष तक बनना पड़ेगा। तो ये जो है एक प्रतिक्रिया है, ये बताया गया है भारत में जन्म पाकर मंदिर के सामान की कोई चोरी करता है तो उसे वज्र कुंड में रखा जाता है, तीखे वज्रों से उसे मारा जाता है। और मंदिर के गव्य की या वस्त्र की चोरी कोई करता है, गव्य का मतलब है गाय से बना हुआ कोई भी पदार्थ हो, दूध है घी है मट्ठा है ना, तो गव्य, मंदिर के गव्य की चोरी या वस्त्र की चोरी करता है तो तप्त पाषाण कुंड में उसे डाला जाता है, तपे हुए पत्थर उसको उसके ऊपर फेंके जाते हैं। तीन जन्मों तक बगुला विट कुंड विट का मतलब मल का कुंड। और यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति मंदिर के गव्य की चोरी या वस्त्र की चोरी करे तो उसको तप्त पाषाण कुंड में डाला जाता है। तप्त पाषाण, तप्त माने तपे हुए पत्थर, जहाँ तपे हुए पत्थर होते हैं वहाँ डाला जाता है और तो उसके बाद तीन जन्मों तक बगुला बनना पड़ता है। बगुला सब लोग जानते हैं बगुला, और तीन जन्मों तक सफ़ेद हंस बनना पड़ेगा, फिर एक जन्म सफ़ेद चील का मिलेगा और फिर अन्य सफ़ेद पक्षी का जन्म प्राप्त होगा। इसके बाद मनुष्य का जन्म भी मिलेगा तो थोड़ी आयु वाला, मनुष्य का जीवन भी मिलेगा कैसा, थोड़ी आयु वाला जीवन मिलेगा और उसमें भी रक्त विकार और स्थूल रोग से असीमित पीड़ा उसको प्राप्त होगी। तो ये सब बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता था। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या चर्चा है, ठीक 4 बजा है तो अभी हम लोग 15 मिनट के लिए आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा करेंगे। तो हमने 3 विषयों पर चर्चा की है, एक तो हरि नाम का जप कीर्तन और दूसरा प्रसाद, भगवान को भोग लगाना है प्रसाद खाना है इस पर, और तीसरा क्या, चोरी, मंदिर में चोरी करना। तो तीन विषयों में हमने जो चर्चा की है, इनमें से कोई भी आपकी ओर से चर्चा हो या कोई प्रश्न हो या मैं प्रश्न करूं। हाँ जी,
जैसे हमारे यहाँ पे सब
माइक से। अच्छा,
सब लोग जो है वो जो सेवा कर रहे हैं वो अलग अलग धर्म से और अलग अलग जातियों के होते हैं, तो वो क्या हरिनाम अपने अपने धर्म के अनुसार भी कर सकते हैं या फिर केवल?
इनका बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने भी धर्म हैं तो प्रत्येक धर्म में कोई ना कोई भगवान का नाम बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि जो 16 नाम है इनसे बढ़कर के और कोई उपाय कलयुग में नहीं है। तो नाम तो है भगवान के और भगवान के प्रत्येक नाम में भगवान की पूरी शक्ति है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं और उस तरह का नियम नहीं बना पाते हैं तो आप ये लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली उपाय हो, कलयुग में हमारी आयु बहुत थोड़ी है, तो थोड़ी आयु में थोड़े प्रयास में जितना अधिक से अधिक आप संपत्ति बटोर सकें उतना ही वो करना चाहिए ना। तो ये 16 नाम जो हरे कृष्ण मंत्र के हैं, तो इनके द्वारा अगर आपको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त होती है, तो इसी को क्यों ना किया जाए। इसलिए श्री चैतन्य ने ये भविष्यवाणी भी की है कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि पूरी पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा, तो हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार होगा। तो हरे कृष्ण मंत्र इतना आसान है और बच्चे भी जो है इसको बोल सकते हैं, 16 नाम हैं, बच्चे भी बोल सकते हैं, बूढ़े भी बोल सकते हैं, और इसमें कोई नियम नहीं है समय का कि इस समय नहीं नाम करना है, या स्थान का भी नियम नहीं है कि इस स्थान में आपको नाम नहीं करना है, और ना किसी व्यक्ति के लिए नियम है कि भाई ये व्यक्ति बहुत अशुद्ध है इसलिए नाम नहीं करना है। तो ना तो स्थान का कोई नियम है, ना समय का नियम है, और ना कोई व्यक्ति को कहा जा सकता है कि भाई ये इसको अधिकार नहीं है, इसका आँख में दवाई डालना है। सवा 4 बजे डालना, ठीक है। अभी 15 मिनट के बाद हम लोग जब चर्चा कर लेंगे तब याद रखना। तो इस नाम में इतनी शक्ति है और इतनी सुविधा है, इसका क्यों ना लाभ उठाएं, ठीक है ना। इस नाम में इतना शक्तिशाली नाम है कि आप नहीं भी जानते हैं, कोई नहीं भी जानता है तो भी उसको लाभ प्राप्त होता है। कोई हरे कृष्णा बोलता है तो प्रभुपाद ने इस संस्था का नाम रखा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो कुछ लोगों ने कहा था कि कृष्ण नाम जो है लोग तो जानते नहीं हैं, तो आप कृष्ण भावनामृत संघ ये नाम आप ना रखिए, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण को कोई नहीं जानता है, लेकिन कृष्ण का नाम अगर वो सुनेंगे या बोलेंगे तो इसमें ही पूरी शक्ति है। इसलिए प्रभुपाद ने इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय ईश्वर भावनामृत संघ नहीं रखा, तो ईश्वर कोई नाम बोलता है, ईश्वर का नाम बोलता है ईश्वर, तो उसमें उतनी शक्ति नहीं है जितनी कृष्ण में शक्ति है। जबकि आप कृष्ण को अगर ईश्वर भी नहीं समझते हैं तो भी कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है ना। तो ये हरे कृष्ण मंत्र आप कैसी भी स्थिति में आप बोलते हैं, आपकी श्रद्धा नहीं भी है, अगर श्रद्धा नहीं भी है और आपकी इच्छा भी नहीं है तो भी आप अगर बोल रहे हैं तो भी इसमें आपको लाभ है। जैसे अजामिल था, अपने पुत्र को नारायण बोलता था, तो अपने पुत्र के भाव में ही नारायण बोलता था तो भी उसके सब पाप मिट गए। तो इसमें इतनी शक्ति है। आप एक दूसरे का भी अगर नाम पुकारते हैं और वो नाम इसी प्रकार के होते हैं, जैसे इनका नाम धनंजय कृष्ण प्रभु है, इनका नाम है नर नारायण प्रभु, असित गोविंद प्रभु, तो ये नाम भी अगर आप बोलते हैं तो इन नामों में मतलब पूरी शक्ति, तो इतना जो है मतलब लाभ है। तो किसी अपने बच्चे का, अपने जो है मित्र का या ऐसे कोई भी नाम आप जो है रखते हैं तो इन नामों में बहुत शक्ति है। तो इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का जो जप है या कीर्तन है, इसका आप लोग नियम बनाइए और इसमें आप निश्चित रहिए कि इसमें अवश्य है फल प्राप्त होगा। कलयुग में दो साधन हैं जिनसे निश्चित फल प्राप्त होगा, एक तो गंगा स्नान और दूसरा हरि नाम। अब गंगा स्नान तो हमेशा मिल नहीं सकता सबको, हर जगह हर समय गंगा स्नान तो नहीं मिलेगा, लेकिन हरि नाम तो हर समय और हर जगह आपको मिल सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं। ठीक है ना, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी,
आपने जैसे बताया कि प्रसाद जो वितरण कर रहे हैं ये बाहर के लोगों को तो पता नहीं होता कि हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं, लेकिन हमको तो पता होना चाहिए कि हम प्रसाद ही मतलब हमारा मेन बिजनेस है। हम जो भोजन बना रहे हैं ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि हम भोजन नहीं बना रहे हैं, हम भगवान के लिए ही बना रहे हैं। ये चेतना जो है आपने बहुत सुंदर बताया कि हर एक कर्मचारी के छोटे से छोटे कर्मचारी तक के हृदय में ये बात पूछने की जिम्मेदारी हमको मतलब लेनी चाहिए, तभी जो है हमारा जो
सबको सुनाई पड़ रहा है इनकी बात नहीं, सबको नहीं सुनाई पड़ा, ये माइक ले लो है? इसको निकाल लो।
हरे कृष्ण।